सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, प्रभु की भी पहचान नहीं। प्रभु की भी पहचान नहीं। मानव जीवन है अमूल धन, इसे न व्यर्थ गवाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा। जीवन जग में सारे कामी किसी तरह जी लेते हैं। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। किंतु धन्य है जो प्रभु से नित, किंतु धन्य है जो प्रभु से नित, ज्ञान अमृत को पीते हैं। ज्ञान अमृत को पीते हैं। योगी पावन जीवन देकर परमानंद लुटाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है।
Om Shanti. 1577 Amritsar ka Harmandir Sahib ya Darbar Sahib ya jise Golden Temple kehte wo ban kar tayar hua aur banane ka jo karya tha wo chauthe guru chauthe patshah गुरु रामदास देव जी महाराज ने किया था। और जब ये निर्माण कार्य चालू था उस समय संगत में अर्थात वहां सेवा करने के लिए वहां के जो महाराज थे राजा वो भी आते थे। और रोज जब वो महाराज वो राजा आते थे तो गुरु उनको देखकर मुस्कुराते थे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। एक बार उस राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या है, मैं जैसे ही आता हूं यहां सेवा करने के लिए ये हंसते क्यों है मुझे देखकर। तो वो गुरु के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे सच्चे पातशाह, मुझे बताइए, जब भी आप मैं आता हूं और आप मुझे देखते हैं तो आप हंसते क्यों है, मुस्कुराते क्यों है मुझे देखकर। तो गुरु रामदेव दास जी महाराज उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक साखी सुनाता हूं। साखी अर्थात कहानी। बहुत समय पहले ऐसा ही जब सेवा का कार्य चालू था तो संगत में एक मजदूर आता था। और वो जो मजदूर था दिहाड़ी मजदूर था, दिहाड़ी अर्थात मजदूरी लेने वाला, बाकी लोग जो थे वो फ्री सेवा करते थे, पर उसमें एक मजदूर जो था वो दिहाड़ी मजदूर था, वो दिहाड़ी लेता था, मजदूरी लेता था। और शाम को वो गुरु से मिलते थे, दृष्टि लेते थे और जाते थे सत्संग सुनकर, जो भी सेवा के लिए दिन भर मजदूर आते थे। तो एक बार उस मजदूर ने सोचा कि मैं रोज पैसे लेता हूँ, मजदूरी लेता हूँ, दिहाड़ी लेता हूँ, एक दिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बिना दिहाड़ी लिए यहाँ सेवा करूँ? पर वो सोचता है मेरे घर परिवार का क्या होगा फिर। तो वो घर जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है, बच्चों से पूछता है, वो कहते हैं बिल्कुल आप सेवा करो, एक दिन हम एक दिन भूखे रह गए तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, एक दिन हम भूखे रह जाएंगे, पर आप जरूर सेवा करना बिना दिहाड़ी लिए। और वैसा होता है। और गुरु अर्जुन, रामदास देव ये कहानी सुनाकर रुक जाते हैं। तो राजा को तो और ही आश्चर्य होता है, और राजा कहते हैं पर ये कहानी आप मुझे क्यों सुना रहे हो, ये साखी आप मुझे क्यों सुना रहे हो? तो गुरु कहते हैं वो मजदूर पिछले जन्म में तुम थे, वो मजदूर पिछले जन्म में तुम थे, एक जन्म की हुई थोड़ी सी सेवा अगले जन्म में क्या बना देती है, राजा बना देती है। तो सेवा भाव का बहुत महत्व है। अभी अभी अव्यक्त वाणी चली, उसमें जो दूसरा भाग था चुने हुए महावाक्य, उसमें बाबा ने तीन बातें कही है। सबसे पहली बात है शुभ चिंतन की या चिंतक की, दूसरी बात है सेवा का लक्ष्य एम, और तीसरी बात है बड़ी दिल बिग हार्ट। ऐसी तीन बातें, तीन परिच्छेद, तीन टॉपिक्स उसमें थे, तो इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला बाबा ने क्या कहा, तुम्हें क्या बनना है, शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है, उससे क्या होगा, दूसरी आत्माएं क्या बन जाएगी, सहयोगी बन जाएगी। और सहयोगी कब बनती आत्माएं, जब स्नेह हो, जब स्नेह होता है तो अपने आप सहयोगी बन जाती है। और सहयोग अगर कोई समय पर सहयोग दे तो उसका क्या होता है, टाइम पर, कोई मर रहा है और हमारे योग का समय है तो उसकी रक्षा करेंगे, या अपना योग अमृत वेला, अमृत वेले का टाइम हो गया है और किसकी तबीयत ही खराब हो गई है तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे और कहेंगे ये तो होते रहेगा, शरीर नश्वर है वैसे भी, हमें तो बाप को याद करके विश्व को सकाज देनी है, क्या एक को एक के लिए हम सारे विश्व की आत्माओं का नुकसान करें, क्या करें? डिफिकल्ट डिसीजन, डिफिकल्ट डिसीजन के लिए जितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसमें एक कहानी कहो, एक स्टोरी सुनाई जाती है, और वो स्टोरी ऐसी है, बड़ी डिफिकल्ट स्टोरी है। रेलवे ट्रैक्ट है दो, एक रेलवे ट्रैक्ट मिसयूज्ड है, वो उसका यूज नहीं किया था, करते है कोई आउट, मतलब यहां लिखा हुआ है मिसयूज, यूज नहीं किया जाता है, डिसेबल्ड। दूसरा रेलवे ट्रैक्ट है जहां पर यूज में है वो। अब ये जो रेलवे ट्रैक है जो यूज में नहीं है वहां एक बच्चा खेल रहा है, और जो रेलवे ट्रैक है जो यूज किया जा रहा है वहां 5-6 बच्चे खेल रहे हैं। अब ट्रेन यहां से आ रही है इस रेलवे ट्रैक से जो यूज किया जाता है, तो ये अब आप इंचार्ज है, आप चाहो तो रेलवे ट्रैक चेंज कर सकते हो, तो क्या करोगे? यहां पे 7-8 बच्चे खेल रहे हैं, यहां एक बच्चा खेल रहा है, आप रेलवे ट्रैक चेंज करके रेल को इधर से भेज सकते हो, वो बच्चा मर जाएगा, और ये जो बच्चे हैं ये इधर खेल रहे हैं, पर ये जो ट्रैक है अब क्या करोगे बोलो? नहीं, बच्चों का कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में एक ही ऑप्शन है, आप ट्रैक को चेंज कर सकते हो। आप ये बताओ कि एक को मारना है या ये 7-8 बच्चों को मारना है? 7-8 को मारना है, कौन कौन हाथ खड़ा करो? 7-8 को मार दो, कोई रहम भाव कुछ नहीं। नहीं, ट्रेन पलटेंगे, ये जा सकती है ट्रेन, उससे ट्रेन चली जाएगी उससे, पर बच्चा मर जाएगा, ट्रेन जाएगी उसके ऊपर से। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, ट्रेन नहीं रुक सकती, ट्रेन बहुत तेजी से रफ्तार में है। अच्छा, ये बहुत अच्छा तर्क है कि एक को मारने से एक अनेकों को बचाने के लिए एक को मार दिया जाए, पर एक दूसरा सोच विचार है, इसका क्या दोष? ये तो गलती पे है ही नहीं, गलती पर तो ये लोग है, इनको ही गलती है, इनको समझना चाहिए था कि ये चालू ट्रैक है, चालू मतलब चालू फंक्शनल है ये, इसकी तो कोई भी गलती नहीं है, इसने तो देख लिया था। ये मैनेजमेंट में ये प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर है ट्रेन को इसी से ट्रैक से जाने दो, क्योंकि इनकी गलती है, इन बच्चों की, इनको समझना चाहिए था, यहां लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, इस बेचारे की क्या गलती है? ये थोड़े टफ डिसीजन से ये मैनेजमेंट में पूछा जाता है। जो भी है, पर जीवन में ऐसी बहुत टफ डिसीजंस कभी कभी लेने पड़ते हैं, जहां पर कितना भी सोचो दोनों ऑप्शंस में प्रॉब्लम नजर आते हैं, पर हर व्यक्ति को ऐसे डिसीजंस कभी ना कभी जीवन में लेने ही पड़ते हैं। बहुत टफ डिसीजंस होते हैं, बहुत बहुत टफ, और वो तब तक समझ नहीं आते हैं जब ले लो और कुछ सालों के बाद जब पीछे मुड़ के देखो तो शायद थोड़ा समझ में आए क्या राज था ड्रामा का उसमें। तो सबसे पहली पॉइंट है शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनो, उससे क्या होगा, तुम दूसरी आत्माओं को सहयोगी बनाओ, और सहयोग काम कब आता है, जब समय पर सहयोग दिया जाता है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे, समय पर सहयोग दो तो क्या मिलेगा तुमको, एक्स्ट्रा बल, पुरुषार्थ का तो बल है ही, एक्स्ट्रा बल मिलेगा, एनर्जी दूसरी जगह पर है और संस्थाओं की, तो एक्स्ट्रा बल। तो केवल संदेश नहीं देना है, संदेश के साथ आत्माओं को सहयोगी बनाना है, और सहयोगी बनाकर उनको संपर्क में लाना है, और संपर्क में लाकर उनको संबंध में लाना है, और संबंध में लाकर उनको सहयोगी बनाना है। केवल संदेश देना तो कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है, अब संदेश देते देते क्या करना है, उनको सहयोग देना है, उनसे सहयोग लेना है ताकि वो सहयोगी बने, उनको भी सेवा देनी है, उनको भी खुशी हो, उनको क्या करना है, आगे संपर्क में लाना है किसी ना किसी रूप से, उनको संबंध में लाना है, और फिर उनको धीरे धीरे सहज योगी बनाना है, जैसे तुम योगी हो दूसरों को भी योगी बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा, सबको प्रभु से, सबका प्रभु से मिलन मनाना है, यही सबसे बड़ी सेवा है, आत्माओं को भगवान से मिला देना, प्यासी आत्माओं को, तड़पती आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, यहां वहां दरबदर भटक रही आत्माओं को ठिकाने पहुंचा देना, ये बड़ा काम करना है, ये सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट है सेवा का लक्ष्य क्या है, एम ऑफ सर्विस। माइक बनाओ, वारिस बनाओ और प्रजा बनाओ। तुम क्या बन जाओ, माइट, और दूसरों को क्या बनाओ, माइक। सहयोग दो आत्माओं को, उनको सहयोगी बनाओ, और जो सहयोगी है उनको क्या बना दो, वारिस बना दो, प्रजा निर्माण करो, ये काम करना है। इसमें बाबा ने कहा कुछ संस्थाएं होगी, एनर्जी बहुत है, बहुत प्यार से आपको सहयोग देगी, ऐसी संस्था है, उनकी भी मदद लो। पर यह सेवा करनी है, बाप को प्रत्यक्षता का यह कार्य करना है। यहां एक दूसरा प्रश्न छुपा हुआ है, सेवा का लक्ष्य क्या हो। बाबा ने तो ये दो तीन बातें बता दी, अब इसको भूल जाओ। दूसरा प्रश्न आप सबके लिए है, सेवा का लक्ष्य क्या हो। हम जो सेवा कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या हो। हाँ, एक तो परमात्मा की प्रत्यक्ष, वो सबसे अल्टीमेट लक्ष्य है। सेवा का लक्ष्य क्या, आत्मा का कल्याण करना। सेवा का लक्ष्य क्या है, सेवा का लक्ष्य एक हमारे लिए क्या है, एक औरों के लिए क्या है, विश्व के लिए क्या है। सेवा का लक्ष्य अपने लिए क्या है, स्थिति। सेवा का लक्ष्य है सेवा करने के बाद में खुशी। सेवा का लक्ष्य है सेवा करने के बाद में संतोष। सेवा का लक्ष्य है सेवा करने के बाद में दुआएं। सेवा का लक्ष्य है सेवा करने के बाद क्या मिले मुझे, अपने आप विशेषताएं जो है वो और उनमें निखार आएगा, आंतरिक प्रगति होगी, समय सफल होगा। स्लोगन क्या है मंजू बहन आज का, ऐसा है थोड़ा थोड़ा पूरा बताओ। अभी तो विक्रम कर्मी का समय गया, अभी क्या व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ बोल से भी धोखा नहीं खाओ। तो सेवा से सबसे अच्छा फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा समय वेस्ट नहीं होता है। अगर सेवा को हटा दिया जाए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और केवल 3 सब्जेक्ट रख दिए जाए तो ऊपर से दिखता है कि सब लोग तपस्या में लग जाएंगे, पर कुछ उल्टा भी हो सकता है। टाइम सबके पास बहुत मिलेगा, और टाइम है तो तपस्या बैठे बैठे करेंगे कितना कितना करेंगे। योग जो इच्छा थी, बहुत योग करना है, योग करना है, चलो 10 दिन पूरा दिन रात योग में लग गए, बाकी आगे नेक्स्ट फिर माया खींचना चालू कर देगी। इसके लिए बहुत अच्छा है सेवा को रखा है। सेवा चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मन जो है भटकना चालू हो जाएगा फिर संसार में, संसार की वस्तुओं में, चीजों में, आकर्षणों में, प्रलोभनों में। तो सेवा का लक्ष्य है कि हम बिजी रहे, सेवा का लक्ष्य है कि हम स्व उन्नति होती रहे, हमारे स्व विकास होता रहे, और व्यर्थ से मुक्त रहे, निगेटिव से मुक्त रहे, आत्माओं की दुआएं मिले, परमात्मा प्रत्यक्षता हो। सेवा का लक्ष्य है स्वयं संतुष्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन, खुशी हो। और सेवा का लक्ष्य क्या है, स्वयं के लिए। भाव स्वभाव की ही तो टक्कर सेवा में होती है, वो जो हार्मनी है, समरसता संस्कारों में, आत्माओं की संस्कार मिलन की रास, ये कहां होती है, बैठे बैठे थोड़ी ना। जंगल मिलन, जंगल में सन्यासी बैठा है वो संस्कार मिलन की रास करता है क्या? संस्कार मिलन की रास तो तब होती है जब वन वन की काठी, 10 लोग एक साथ सेवा कर रहे, एक का स्वभाव ना मिले दूसरे से और सब में झगड़े है, सब अलग अलग जंगल की अलग अलग लकड़ियां है, हर एक का एक दूसरे से झगड़ा है। अब इन सबको मिलके सेवा करनी है। भाषा भी अलग अलग है, एक ने कुछ बोला तो उसको लगता है उसने गाली दी। भाषाएं भी अलग अलग है। अभी यही तो पुरुषार्थ है कि इन सब के बीच में रहते हुए संस्कार मिलन की रास करो, और ये होगा क्षेत्र का, ये है सेवा के क्षेत्र में ही साथ में आएगा सब। यहां पर ही तो वो सारा ज्ञान जो सुना है, लिखा है, पढ़ा है, वो सारा दाव पे लगाना पड़ेगा यहां। इसके लिए इसके पहले भी कहा था उस क्लास में, एक साथ 20 माता एक ही कमरे में, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बहुत भयंकर पुरुषार्थ है, एक साथ एक हॉल में 20 माता है, और उसमें से अगर उनकी भाषाएं अलग हो और अलग अलग स्टेट की हो, उसमें से कोई विदेश वाली हो, तो बस फिर तो एक फिरंगी गोरी माता गट गुट बन जाएंगे वहां पे अलग अलग। दूसरे दिन ही घर जाने की तैयारी, इनके बीच में नहीं रहना है। अच्छा तो सेवा में अवसर मिलता है इस रास का, संस्कार मिलन की रास। जैसे वो क्या करते हैं, गरबा रास, गरबा दांडिया, उसमें तो कितना ये चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन चाहिए, सिंक्रनी चाहिए, नहीं तो डांस बिगड़ जाएगा। वैसे यहां पर भी संस्कार मिलन की रास है ये, तो ये होती है सेवा में। तो सेवा में ये तो सबसे बड़ा फायदा है, अगर ये कर लिया किसी ने तो बस फिर जीवन सफल, फिर किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। कैसे कैसा भी, कैसी भी आत्मा हो सेवा करने वाली, कभी कभी बहुत उमंग उत्साह वाले मिलेंगे, कभी कभी एकदम निगेटिव थॉट्स वाले मिलेंगे, जो हर चीज में निगेटिव ही देखते हैं। कितनी भी अच्छी बात, कितनी भी अच्छी सेवा हो, उसमें निगेटिव को ढूंढ ही लेंगे। दृष्टि इतनी पैनी है कि जिसमें हम सोच सोच के सोच रहे अमृत वेला की ये इतनी पॉजिटिव बात है, इसमें तो निगेटिव कुछ हो नहीं सकता, ये सोच रहे अब ये इसके बारे में क्या कहेगा, और वो जब कहेगा तब एकदम आश्चर्य होगा, बाप रे ऐसा भी हो सकता है, वो ढूंढ लेगा वहां पर, निगेटिव को ढूंढ लेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और जिसको पॉजिटिव ढूंढना है वो कितना भी पॉजिटिव हो उसमें से पॉजिटिव, जितनी भी निगेटिव परिस्थिति हो उसमें से पॉजिटिव ढूंढ ही लेगा। जैसे इसके पहले भी बताया था, एक व्यक्ति का हमेशा उसको कहने की आदत होती है कि इससे भी बुरा हो सकता है, ये जो भी हुआ ये तो कुछ नहीं, इससे भी बुरा हो सकता था, ये बहुत अच्छा हुआ। तो उसका दोस्त एक बार उसको मिलता है और कहता है मैंने रात में एक स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने देखा कि मैं मर गया हूं। तो वो कहता है कि इससे भी बुरा हो सकता है, वो कहता है इससे बुरा अब क्या होगा, मैं मर गया हूं अभी कुछ रहा ही नहीं। वो कहता है स्वप्न यदि साकार हो गया तो उससे भी बुरा हो गया ना। तो सेवा का लक्ष्य, ये भी एक सेल्फ चेकिंग की पॉइंट है, हमारे सेवा का लक्ष्य क्या है, क्यों सेवा कर रहे हैं। अगर सेवा में जा रहे हो स्थिति ही बिगड़ रही है तो सेवा का लक्ष्य सफल नहीं हुआ। स्थिति सेवा का एक लक्ष्य एक भी ये भी है कि बहुत सारी विकराल परिस्थितियों में अचल अडोल रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस ब्राह्मण आत्माओं को योग में नहीं है, धारणाओं में नहीं है, इतना ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में तो बिल्कुल नहीं है, कितना ज्ञान चाहे उतना धारण कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस जैसे ही किसी दूसरे के संपर्क में जाते हैं, टक्कर होती है संस्कारों की, शब्दों की टक्कर, बोल की टक्कर, हाँ मोह, दोनों चीजें हो सकती है, दो चीजें होती है, एक मोह और दूसरा घृणा, दो व्यक्तियों के बीच में यही होता है। एक तो मोह हो जाएगा किसी से, बहुत ज्यादा मोह, वो चाहिए उसको, जब तक देखते नहीं तो चैन नहीं आता है, उसका चेहरा दिखना चाहिए बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा घृणा, वो अगर बाजू से भी चला गया मेरा हार्ट बीट बढ़ जाती है बीपी बढ़ जाता है बिल्कुल, वो दिख गया मतलब पूरा दिन खराब हो गया, पूरा एकदम संकल्प चलने लगे, एकदम अच्छा अच्छा योग किया और फिर मुरली सुनी और फिर चिंतन चालू है, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, और धीरे धीरे चल रहे बाबा की याद में, ऊपर से किरणें आ रही है और वो एकदम से दिख गया एकदम फरिश्ता शरीर से बाहर एकदम आश्चर्य, वो चला जाता है सूक्ष्म वतन में, उसको हम वहां भेज देते हैं, अब मैं देखता हूं इसको, छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ जो जो किया है देखना है मुझे इसको, सारा ज्ञान योग क्लास और नुमा शाम का योग, जिस जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया मैं उन सब से माफी मांगता हूं, फिर उनसे माफी मांग ली, योग पूरा हुआ, फिर से दिख गया अब इसको छोड़ूंगा नहीं तो सेवा का लक्ष्य हो अचल अडोल स्थिति, सेवा का लक्ष्य हो निर्मानता, सेवा का लक्ष्य क्या हो निर्मानता। अहंकार सबसे ज्यादा कहां आता है, योग में, कोई योग में अहंकार करता है क्या, कम, आज मैंने 8 घंटा योग किया, अच्छा है ऐसा कोई करे तो प्रेरणा मिल जाए दूसरों को कि हम भी करेंगे। जो कोई ज्ञान का आज मैंने 6 घंटा चिंतन किया ऐसा कहे तो आजू बाजू वाले भी धीरे धीरे करने लगेंगे उसको देखकर। पर कोई ऐसा ज्यादा अहंकार किस में आता है? सेवा में। तो सेवा माध्यम है जिससे हम निरहंकारी बने, क्योंकि सबसे ज्यादा अहंकार वहीं आता है। हमने ये किया, तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करते तुम, क्या करते रहते हो दिन भर, हमको देखो। इसको कहते हैं सेवा। निठल्ले कहीं के बोझ। तो अहंकार तो सेवा में आता है। तीसरी पॉइंट है बड़ी दिल। बाबा ने 3 दिल का हमेशा वर्णन किया है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल। बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है फिर तो, फ्राक बड़ी में आ जाएगा वैसे तो। बड़ी दिल, सच्ची दिल और साफ दिल, ये 3 तो इस पर शायद कोई एक मुरली भी है। तो बड़ी दिल अर्थात क्या? बाबा ने कहा बड़ी दिल कैसी है, क्या उदाहरण दिया? उदाहरण कौन सा दिया? मुरली में उदाहरण कौन सा दिया? क्या कर देती है? मिट्टी को सोना, असंभव कार्य को संभव, जो कमजोर है वो शक्तिशाली। तो बड़ी दिल स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो बड़ी दिल अर्थात क्या क्या? अब ये प्रश्न है। बिग हार्ट, मैग्नानिमस हार्ट अर्थात क्या? जेनरस हार्ट। बिग हार्ट अर्थात क्या? अपने अंदर सबकी कमियों को संभालेगा, इसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, सबकी कमियों को अपने अंदर सागर की तरह संभालेगा। एक दूसरा, सबको एडजस्ट कर लेगा और हर जगह फिट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, बहुत लोच रहेगी उसको, मानसिक आध्यात्मिक लोच, स्पिरिचुअल रेजिलियंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, स्पिरिचुअल रेजिलियंस, स्पिरिचुअल फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, किसी भी लोगों के साथ एडजस्ट होता है, किसी भी स्थान में एडजस्ट होता है, किसी भी वेदर में एडजस्ट हो जाता है। यहां पर बहुत गर्मी है, अरे हमें एडजस्ट नहीं होते, हम तो जाना है अभी, बहुत हो गया, यहां हम नहीं रह सकते, ये कमरा ठीक नहीं, हमको यहां नहीं रह सकते, हम ये लोग ठीक नहीं, हम यहां नहीं रह सकते। कोई भी एटमॉस्फियर वो को, किसी भी प्रकार का भोजन हो, कैसा भी स्थान हो, कैसा भी समय हो, लोग हो, उन किसी के भी बीच में एडजस्ट हो जाना, हाँ उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप एडजस्ट हो जाना, ये बहुत बड़ी कला है। लोग बाकी तो सब कुछ करते पर ये नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते लोगों के साथ। और बड़ी दिल अर्थात माफ कर देना, बड़ी दिल अर्थात कंपैशन, रहम दिल, बड़ी दिल अर्थात ना उम्मीद से भी वालों से भी उम्मीद रखना, चाहे कोई कितनी बार भी 100 बार गलतियां करता हो परंतु फिर भी उम्मीद है कि एक दिन ये भोला भाई ठीक हो ही जाएगा। भोला भाई बोला था ना संडे की मुरली में, और सबके सबको समेट के चलना, सबको लेके चल, समेट के सबको लेके चलना, सबको साथ साथ लेके चलना, हाथ और साथ मुरली में बोले, हाँ प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, सबको अपना मानना, डिफरेंस नहीं करना। जैसे एक बार एक समुद्र किनारे पर एक बच्ची डूबने लगी, एक लड़की डूबने लगी और उसे बचाया गया और बचाकर किनारे पर लाया गया, भीड़ हो गई, एक बूढ़ा व्यक्ति दूर बैठा था वो आने लगा मदद करने के लिए, पर भीड़ के बीच में एक नौजवान आया, हटो हटो सब लोग हटो, मुझे सीपीआर आता है, बच्ची बेहोश थी, सीपीआर अर्थात जब कोई बेहोश होता है तो पंपिंग करते, चेस्ट कॉम्प्रेशन, वो एकदम हट गया, सब लोग हट जाओ, मैं ट्रेंड हूं सीपीआर में, मैं सीपीआर करूंगा, और वो सीपीआर करता है उसको और वो बच्ची जाग जाती है, बच जाती है। तो सब लोग उस नवयुवक को बहुत सराहना करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो जो बूढ़ा व्यक्ति आया होता है वो भी कहता है बहुत अच्छा किया तुमने, पहले तो वही था बचाने के लिए खड़ा पर ये आ जाता है तो सबको हटा देता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति भी उसको कहता है बहुत अच्छा काम किया तुमने, बच्ची बच गई। थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, ये जो युवक था जिसने बचाया था, इतनी तपती धूप, चक्कर आने लगते हैं उसको और वही बेहोश है क्योंकि गिर पड़ता है और जब उठता है तो एम्बुलेंस में होता है और एम्बुलेंस में देखता है वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके पल्स पर उसका हाथ है। तो कहते मुझे क्या हुआ, वो कहते तुम बेहोश हो गए थे, तुमको भी CPR करना पड़ा था। और तब उसको पता चलता है वो बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर है, जबकि ये डॉक्टर नहीं था, ये तो ऐसा ही था जिसको ट्रेनिंग दी थी खाली, वो मेडिको नहीं था। तो वो पूछता है आपने तब मुझे बताया क्यों नहीं आप डॉक्टर हो। वो कहता है मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनने का नाम मान शान नहीं था, लोगों की जान बचाना था, और मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, इसके लिए मैं चुप रहा। तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कहता है कि आज आपने दो जाने बचा ली युवक। तो बड़ी देर अर्थात ये नहीं सब कुछ मैं ही करूं, मुझे ही करना है, मेरा ही नाम हो, सबको आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। बड़ी दिल अर्थात इस मुरली में बाबा ने कहा संकुचित हृदय नहीं, शब्द प्रयोग किया बाबा ने, संकुचित नहीं, बड़ा दिल। विवेकानंद ने कहीं कहा है ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, ऑल एक्सपांशन इज लाइफ। जो भी एक्सपांशन है वो जीवन है हृदय का, और जो कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचितता, सिकुड़ना है हृदय का, बस मैं, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा ये, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरा परिवार, ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, ऑल एक्सपांशन इज लाइफ। तो संकुचित हृदय नहीं, बड़ी दिल, फ्राक दिल, और बड़ी दिल अर्थात कंजूस नहीं, कंजूस नहीं, बड़ी दिल अर्थात दिलदार, दरिया दिल, सबको देने वाला, जिसको जो चाहिए दे दो, जिसको जो चाहिए वो दे दो, अपने पास सब जमा करके रखने वाला नहीं। ये संग्रह वृत्ति ना हो, अपरिग्रह। जैन धर्म में 5 महाव्रत है, उसमें एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात नॉन पोजेशन ऑफ थिंग्स, बहुत सारी जमा करके नहीं रखना अपने पास, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और कोई ना खुद यूज करते ना दूसरों को यूज करने देते। जैसे वो व्यक्ति होता है एक साहूकार, उसके पास इतना धन होता है, इतना धन होता है, इतना धन होता है, पूरा घर धन से भरा हुआ, और एक दिन उस गांव में चोरी हो जाती है। उसको चिंता होती है कि इस गांव में एक चोर की प्रवेशता हो चुकी है, अब धीरे धीरे मेरे घर में भी पहुंच जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कहता है एक युक्ति सोचता है, सारा धन लेता है और धन से 2 अच्छे बड़े हीरे खरीदता है, और अपने खेत में एक गड्ढा करता है और 2 हीरे उसमें डाल देता है। अब घर में कुछ भी नहीं है, एकदम गरीब गरीब गरीबी में जीता है। और उसे खुशी है कि मेरे पास 2 हीरे हैं, परंतु बेचैनी रहती है रोज, तो रोज जाता है छुपके से, खोदता है और हीरे देखता है, और देख के फिर मिट्टी डाल के वापस, रोज जाता है, खोदता है, मिट्टी देख, हीरे देखता है और वापस। तो वो जो नौकर होता है उसको डाउट होता है, ये सेठ जी जाते कहाँ है रोज। चुपके से देखता है, अच्छा ये बात है। और एक दिन मौका देखते हीरे चुरा के, और रातों रात वो क्यों रुकेगा, रातों रात भाग जाता है। दूसरे दिन सेठ जी आते, खोदते हैं, हीरे गायब, धाड़ लगा के चिल्लाने लगते, मेरे हीरे, मेरे हीरे, मेरे जीवन भर की कमाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। पड़ोसी आके कहता है क्या हुआ, वो कहते मेरे हीरे चले गए, सारी प्रॉपर्टी उसमें थी। वो कहता एक काम करो, 2 पत्थर ले लो और इसमें डाल दो, और रोज आओ, खोदो और पत्थर को देखो और जाओ। वो कहते क्या मजाक कर रहे हो तुम। वो कहते वैसे भी वो हीरो का तो तुम कुछ कर नहीं रहते ना, आप तुम्हारे काम के थे ना दूसरों के काम के थे, तो तुम अभी भी काम तो वही करना है ना, समझो ये जो पत्थर यही हीरे है, इनको देखो और जाओ। कंजूस, वृत्ति नहीं, दिलदार, बड़ी दिल अर्थात दिलदार। इसके लिए हिंदी में कहावत है कि जो कंजूस लोग होते हैं वो मरने के बाद सांप बन के बैठते हैं अपने धन पर। धन मिलता है ना, कुछ कुछ मिलता है, हांडी वगैरह, तो उसके सांप में एक नाग होता है, वो पिछले जन्म में उसका मालिक रहता है, ना मैं कुछ खाऊंगा लूंगा ना तुमको खाने दूंगा, अभी भी वफादारी से अपने धन को संभालता है, नाग बनकर कुंडली मारकर बैठता है हांडी पर, कोई नहीं लेना चाहिए, वो पिछले जन्म का साहूकार होता है। तो फ्राक दिल अर्थात बड़ी दिल अर्थात फ्राक दिल कंजूस नहीं, और बड़ी दिल अर्थात बाबा ने कहा इस बड़ी दिल से सेवा करो, स्वयं के लिए भी बड़ी दिल और दूसरों के लिए भी बड़ी दिल, स्वयं के भी सहयोगी बनो दूसरों को भी सहयोगी बनाओ, फिर से वही संपर्क में लाओ, संबंध में लाओ, सहयोगी बनाओ, आज सहयोगी है कल सहयोगी भी बन जाएंगे, जितने भी सहयोगी है आज कल सहयोगी सहयोगी बन जाएंगे। एकदम किसी पर योगी बनाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, क्या देखकर पुरुषार्थ करना है, ज्ञान देना है, समय, नब्ज और धरनी, ये तीनों देखकर समझकर ज्ञान देना है। एक भाई बीके भाई ट्रेन से जा रहा था, उसको कहा कि तुम ज्ञान क्यों नहीं सुनाते, उसने कहा मेरे पास हीरे है ऐसे मैं कहीं पे भी फेंक दूं क्या, हीरे है ज्ञान अर्थात हीरे, किसी के सामने भी थोड़ी ना फेंकने होते हैं, देखकर कितना इंटरेस्ट है उसको, जिसको इंटरेस्ट है खुद ही पूछेगा ये व्हाइट क्यों पहनते हो, ये बैच क्या है, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं उसको तो कितना भी समझाओ नहीं मानते नहीं सुनते, वो भी देखकर ज्ञान देना है। तो ये तीन बातें थी, सबसे पहली बात शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, सबके लिए शुभ चिंतन, कोई भी हो कैसा भी हो, और फिर उन आत्माओं को सहयोगी बनाओ। दूसरी बात थी सेवा का लक्ष्य क्या है, बाबा ने कहा माइक बनाओ, वारिस बनाओ, प्रजा बनाओ, प्रत्यक्षता करो बाप की, और जो हमने चिंतन किया सबने मिलके सेवा का लक्ष्य किया, और चौथी तीसरी पॉइंट बड़ी दिल, अपनी दिल स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी कैसी हो, बड़ी हो। अच्छा हम शांति
जैसी हो जो काल विशेष न।